नमस्कृत्यं
नरं
देवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी।
आज हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का दशम अध्याय का, इनका शीर्षक है यमुना अर्जुन वृक्ष का उद्धार, श्लोक संख्या नंबर 28 और 29। तो कृपा करके मेरे पीछे दोहराइए। कृष्ण कृष्ण महायोगी, कृष्ण कृष्ण महायोगी, त्वाम आधाय पुरुष परा, त्वाम आदह पुरुष परा, त्वाम आदह पुरुष परा, व्यक्ता व्यक्तम इदं विश्वम, व्यक्ता व्यक्तम इदं विश्वम, रूपं ते ब्राह्मणा विधु, रूपं ते ब्राह्मणा विधु, कृष्ण कृष्ण महायोगी, कृष्ण कृष्ण महायोगी, त्वामादाय पुरुषापरा, त्वामाध्य पुरुषापरा, व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम्, व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम्, रूपं ते ब्राह्मणा विधु, रूपं ते ब्राह्मणा विधु।
कृष्ण महायोगी,
कृष्ण कृष्ण महायोगी,
माध्यः पुरुषः परा, कृष्ण महायोगी
कृष्ण कृष्ण महायोगी
स्वामाद्य पुरुष पर
स्वामाद्य पुरुष पर
व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं
दया व्यक्तमिदं विश्वं
रूपं ते ब्राह्मणा विदु
रूपं ते ब्राह्मणा विदु
कृष्ण कृष्ण महायोगी
कृष्ण कृष्ण महायोगी
शब्दार्थ इस प्रकार है कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण
हे कृष्ण
महायोगी
हे
योगेश्वर
त्वं
तुम आदह मूल कारण पुरुष परम पुरुष परः इस सृष्टि से परे व्यक्ता व्यक्तम यह विराट जगत जो कार्य कारण अथवा स्थूल सूक्ष्म रूपों
में
से बना है इदम यह विश्वम सारा जगत रूपम रूप ते तुम्हारा ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण विदु जानते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद देशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की अनुवाद। हे कृष्ण आपकी योगेश शक्ति आपकी योग शक्ति अचिंत है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप पास रह कर भी दूर हैं और इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं सर्वखलितम ब्रह्म इस वैदिक कथन के आधार पर इस वैदिक कथन के आधार पर कि आप सर्वेश्वर हैं और यह विराट विश्व अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूप में आपका ही स्वरूप है। तात्पर्य नल कुबेर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता अपनी निरंतर स्मृति के कारण नारद की कृपा से कृष्ण की श्रेष्ठता को समझ सके। अब उन्होंने स्वीकार किया यह आपकी योजना थी कि नारद मुनि के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो। अथ आप परम योगी हैं, आप भूत वर्तमान तथा भविष्य सबके सबके जानने वाले हैं, आपने ऐसी सुंदर योजना बनाई थी कि यद्यपि हम यहाँ पर जुड़वा अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े रहे, किंतु हमारे उद्धार के लिए छोटे बालक के रूप में आप प्रकट हुए हैं। यह आपकी ही अचिंत्य योजना थी। आप परम पुरुष होने के कारण कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। होम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ग्रामीयं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुधपद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका एक 28वां श्लोक का अनुवाद खाली है, तात्पर्य नहीं है, तो एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। तत्र श्रीय परमाय ककु भय स्फुरुरन्तो सिद्धौ उपेत्य कुजयोर इव जात वेद कृष्णम प्रणमय शिरशाखिल लोकनाथम बद्धांजलि विरा जाओ इदम उच्चतो स्म। अनुवाद। तत्पश्चात जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे, वहीं पर दोनों वृक्ष से दो महान सिद्ध पुरुष जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे बाहर निकल आए। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे। हे कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है, आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं, आप समस्त कारण के कारण हैं, आप पास रह कर भी दूर हैं और इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि आप सर्वेश्वर हैं और यह विराट विश्व अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूप में आपका ही स्वरूप है। तो यहां पर आज के इन श्लोकों में नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान से प्रार्थना आरंभ करते हैं, भगवान की स्तुति गाते हुए। तो यह दृश्य इस प्रकार घटा कि यशोदा मैया ने जब बाल गोपाल कृष्ण को जब उखल के साथ जब बांध दिया, तो कृष्ण जो नारद ऋषि ने जो शब्द कहे थे उस शब्द को पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के शब्द को उनके वाक्य को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण ने इस लीला को आरंभ किया। कुछ आचार्यगण ये भी वर्णन करते हैं कि कृष्ण के साथ उखल को क्यों बांधा गया, क्योंकि यशोदा मैया ये सोच रही थी कि इस यहाँ पर मस्ती करने वाले केवल कृष्ण नहीं थे, साथ में उखल ने भी मदद किया, तो उखल को भी बांध दिया जाएगा, क्योंकि उखल के सहायता से कृष्ण ने मटकी निकाले थे, तो इसलिए उखल के साथ बांध दिया। तो जब उखल के साथ जब कृष्ण को बांध दिए तो कृष्ण उसी उखल को घसीट कर लेकर जाते हैं और उस स्थान पर लेकर जाते हैं जहां पर यमला अर्जुन जो दो वृक्ष जो थे, अब ये दो वृक्ष कोई साधारण नहीं, स्वयं कुबेर के दो पुत्र के रूप में वहां पर उपस्थित हैं, और क्योंकि नारद ऋषि के द्वारा उनको श्राप प्राप्त हुआ था कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, और उसी श्राप को यहां पर, हालांकि हम श्राप तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी दिखाई पड़ता है कि वही श्राप आशीर्वाद में बदल गया, तो अब वही नारद मुनि के कथा अनुसार यहां पर दोनों वृक्ष के रूप में उपस्थित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी उखल को उस दो पेड़ के बीच में लाकर उन्हें जो इस प्रकार फंसा दिया कि कृष्ण ने केवल उस अपने पैरों को खींचा कि वो जो उखल जो वो उखल के साथ उखल उस दो पेड़ को गिरा दिया, और गिराते ही उसमें तेजस्वी दो देवता गण प्रकट हुए। तो आचार्यगण ये भी वर्णन करते हैं कि यहां पर ये तो तेजस्वी जो देवगण जब प्रकट हुए तो कृष्ण अब यहां पर बाल लीला का रोल खेल रहे हैं। तो एक बालक के रूप में कृष्ण कह रहे कि तुम लोग कौन हो, हमने तो सुना है मैया से कि देवता गणों का इस प्रकार स्वरूप होता है, आप भी देवगण दिख रहे हो। तो यहां पर दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों भी कृष्ण के चरण को स्पर्श करने जा रहे थे, और कृष्ण अपनी बाल अवस्था में बाल के भाव में वही कृष्ण अपने आप को व्यक्त कर रहे कि मैं तो नंद का एक लाला हूं, आप लोग मेरे चरण को क्यों पकड़ रहे हैं। और ऐसे कहकर कृष्ण अपने आप को थोड़ा पीछे ले रहे थे, और इस तरह यहां पर नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों भी हाथ जोड़कर अब कृष्ण की स्तुति गाते हैं। तो बड़ा सुंदर स्तुति है। इस स्तुति में जहां पर नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान के दिव्य गुणों को वर्णन करते, तो यहां पर प्रथम जो शब्द कहा गया है कृष्ण कृष्ण, जो कृष्ण कृष्ण के शब्द को दो बार दोहराया गया है, जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ सुबल्ले सुभद्रा माई की, कृष्ण कृष्ण करके दो बार दोहराया गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दोनों जन नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों मिलकर इस प्रार्थना को कह रहे हैं। तो देवगण मिलकर इस प्रार्थना को कह रहे हैं, तो वो क्या है प्रार्थना, तो यहां पर वर्णन है। तो यहां पर नल कुबेर और मणिग्रीव इस अवस्था में अपने आप को इतना धन्य समझ रहे हैं और नारद मुनि की विशेष कृपा को प्राप्त करने का अति सौभाग्य प्राप्त करने ऐसे पात्र अपने आप को मान रहे हैं। तो वास्तविकता नल कुबेर और मणिग्रीव ने इस बात को अब जाकर इस बात से वो पूरी तरह सहमत हो गए, क्योंकि कभी कभी दवाई जब शुरुआत में जब दिया जाता है तो बड़ी कड़वी रहती है। तो बालक अवस्था में बाल भाव में व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये इस प्रकार कड़वा दवा क्यों पिलाया जा रहा है, लेकिन जब उसका सेहत जब सुधरता है तब पता लगता है कि वाकई इस दवाई में काफी जोर था, काफी बल था जो मेरे सेहत को सुधार दिया। ठीक इसी तरह यहां पर नारद मुनि के शुरुआत में श्राप में उनको एकाएक उस बात से पता नहीं था कि कितना सौभाग्य होगा, मगर आज जाकर उन्हें ये पता लग रहा है कि वास्तविक हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि यहाँ पर स्वयं कृष्ण का दर्शन भी हो रहा है और कृष्ण के द्वारा, कृष्ण ने ही हम पर कृपा बरसाए नारद मुनि के द्वारा। अब नारद का अर्थ क्या है? नारद, नर यानी कि जीव, और नार यानी कि जो जीव जो सनातन काल तक जीते हैं उसका दिव्य ज्ञान, जो जीव कभी मरते नहीं है वो नार, वैसे ज्ञान को प्रदान करने वाले वो है नारद। तो अब जीव आत्मा जो अज्ञान अवस्था में है मगर नारद मुनि की भेंट होने से ही वो इस अज्ञान अवस्था से बाहर निकलता है। अब यहां पर इन दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव नारद की विशेष कृपा अनुकंपा से उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किए, इस भक्ति को प्राप्त किए, और उसे उस भक्ति को प्राप्त करते ही उन्होंने इस शब्द को कहा और वह कहने लगे महायोगी कृष्ण, कृष्ण महायोगी। और वह कह रहे कि हे कृष्ण, आपकी अचिंत्य शक्ति है, आपकी शक्ति का कोई तोल नहीं, आपको कोई नहीं नाप सकता। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी अपने स्तुति में गाते हैं कि अगर समुन्दर को शाही बना दिया जाए और बालू को अगर कलम बना दिया जाए तत्पर भी आपके गुणों को लिखने के लिए जाएंगे तो भी कम पड़ेगा। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं यही मत कृष्ण द्विज सतगुण अनंत ब्रह्म शिव सनक आदि न पाए जर अंत। तो कहते हैं कि भगवान के इतने अनंत गुण हैं कि ब्रह्मा शिव और यहां तक कि सनक आदि ये सभी लोग अगर मिलकर भी बैठे तत्पर भी भगवान के दिव्य गुणों को लिखकर वो पूर्ण नहीं कर सकते। ऐसे बताया जाता है कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी वह अपने चार मुख से भगवान की स्तुति गाने लगे और गाते गाते उन्होंने देखा मुझसे नहीं हो सकता तो पंचमुख महादेव आए गाने के लिए। तो पंचमुख महादेव ने भी अपने पंचमुख से गाने लगे तत्पर भी पूर्ण नहीं हुआ, तब फिर अनंत शेष अपने अनंत मुख से शुरू कर दिए और अनंत मुख से जब अनंत ने जब शुरू किए तो करते करते तत्पर भी वो गुण बाकी रह गया, शेष रह गया। तो यहां पर अनंत शेष अपने आप को लज्जित होकर वो ब्रह्मांड के नीचे चले गए, बोले मेरे लिए सेवा ही ठीक है, और सारे ब्रह्मांड को मस्तक पर धारण किए। वैसे अनंत शेष भी अपने अनंत मुख से अगर भगवान की स्तुति भी गाए तत्पर भी पूर्ण नहीं होता। और वैसे यहां पर नल कुबेर और मणिग्रीव कह रहे कि आप इतने महान हो जिस जो आपके चरण धूलि के लिए सारे बड़े बड़े देवगण लालायित हैं, अब वही बाल गोपाल के रूप में यहां पर उपस्थित हैं। तो यहां भगवान के इस बाल गोपाल की लीलाओं को वही व्यक्ति समझ सकता है जो ब्रज की भावों में लगे हुए हैं, वही व्यक्ति भगवान की इस दिव्य लीलाओं को समझ सकता है। यहां पर नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान की इस लीला को देखकर आश्चर्यजनक हो चुके हैं और वो इस प्रकार इस बात को कहते महायोगी। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर अपने स्तुति में वर्णन करते हुए बताते हैं यद रोम रंग परिपूर्त विधाव रक्षा वरहा जनमणि बहुवरा विश्वमूर्ते। जब भगवान वराह अवतार जब हुए थे तो वराह अवतार में पूरे उनका इतना बड़ा विश्व रूप था, इतना विकराल रूप था कि पूरे संसार के समुन्दर को भी अगर इकट्ठा कर लिया जाए और उस पानी को लेकर अगर रख दिया जाए तो वराह भगवान के रोम को छिद्र को भी नहीं भर सकता, पूरे संसार का समुन्दर का पानी भी। फिर आगे क्या कहते तम नाम नाथ अरविंद दृशम यशोदा पनहि पानहि द्वयंतम स्नपयस स्नपयम भूवः। तो कहते हैं वही वरहा भगवान जब बाल गोपाल वृंदावन बाल गोपाल के रूप में जब प्रकट होते हैं तो यशोदा मैया एक बाल्टी लेकर पानी लेकर जब डाल देती है तो कृष्ण का स्नान हो जाता है। और ऐसा अद्भुत कार्य कौन कर सकता है? तो ये अचिंत्य शक्ति दिखती है जो इतने बड़े भी है और साथ में ऐसे स्वरूप को भी धारण किए हैं। इसी बात को देवहूति माता भी प्रार्थना करती है, वो पूछती है कपिल देव को कि आपके गर्भ में पूरा विश्व ब्रह्मांड अटका हुआ है, आपके गर्भ से ही हुआ है। कहते स्वत्वम भात्रो में झटरे नाथा कतम नु यश उदर एता आस्ति। वो कहते हैं कि कहती है कि माता देवती कहती है कि आपके गर्भ में पूरा विश्व ब्रह्मांड अटका हुआ है और आप मेरे गर्भ में कैसे अटक गए मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है। जैसे इसे हम इस प्रकार अपने सामान्य बुद्धि से अगर कुछ समझने का अगर प्रयास किया जाता है एक उदाहरण से समझ सकते हैं कुछ हक तक। जैसे कि मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा। अब मन देखो क्या अद्भुत कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि एक छोटे से इस मंदिर में हम बैठे हैं, अब यहीं पर ही बैठकर मन के अंदर अगर कहीं जो समुन्दर का अगर देख स्मरण कर दिया जाए तो पूरा समुन्दर इस मन के अंदर आ गया। अब वो मन के अंदर वो समुन्दर आ गया और ये समुन्दर है कहां पर? इस हॉल के अंदर। तो जब ये मन ऐसा अद्भुत कार्य कर सकता है और मन से श्रेष्ठ कौन है? आत्मा और फिर परमात्मा। तो परमात्मा वो भगवान क्यों नहीं अद्भुत कार्य कर सकता है? और निश्चित इसलिए उनको यहां पर संबोधित किया गया महायोगी। फिर आगे कहते हैं त्वम आधाय। त्वम आधाय यानी कि आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप ही जैसे दो कारण होते हैं, एक होते उपादान कारण, दूसरा होता निमित्त कारण। ये उपादान कारण जो होता है जो मुख्य जो व्यक्ति इसके पीछे रहता है और निमित्त जो होता है जिस पात्र को लेकर बनाया जाता है। जैसे अगर कोई एक भक्त खीर बना रहा है तो उसका उपादान कारण भक्त हुआ और जो पात्र जो बना रहे जिस पात्र में बना रहे वो निमित्त हुआ। तो वैसे ही ये भौतिक संसार का उपादान कारण और निमित्त कारण, निमित्त कारण है भौतिक संसार और उपादान कारण कौन? स्वयं भगवान। तो उपादान और निमित्त कारण सभी कारणों के कारण आप ही हो। और ऐसा सुंदर ढंग से आप सारे कारणों के कारण हैं कि आपका जो समय है एकदम परफेक्ट है, आपका टाइम एकदम परफेक्ट है। तो भगवान की योजना में कभी भी उनका योजना भंग नहीं होता, जो उन्होंने सोच लिया बस होता ही है। ये भगवान की योजना। जैसे अब यहां पर देखिए नल कुबेर और मणिग्रीव इस प्रकार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि कई बार मंदाकिनी गंगा की ओर टहलने के लिए आते थे और वहां पर ऐसे नहीं कि नारद मुनि इस बार पहली बार आए थे, उसके पहले भी आते थे और नल कुबेर मणिग्रीव से हालचाल पूछकर जाते थे, सब ठीक वगैरह है क्या, कैसे चल रहा है इत्यादि। अब यहां पर देखिए नारद मुनि जब आए तो ऐसे टाइम पे आए। अब ऐसे भी नहीं कि अब नल कुबेर मणिग्रीव अब सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश कर रहे, नहीं, वो ऐसे समय पर है कि जिस समय उनकी ऐसी अवस्था थी कि नशे में चूर निर्वस्त्र और अन्य स्त्रियों के बीच में, और ये अवस्था में जब नारद मुनि वहां पर आ खड़े हुए तो ये कोई और नहीं, ये भगवान का ही स्पेशल अरेंजमेंट था। भगवान चाहते थे कि अब यहां पर इनके सुधार के लिए कुछ करना होगा, और वो नारद मुनि के द्वारा हुआ। तो कभी जब हमारे जीवन में जब कुछ घटता है तो कभी हमें निमित्त जो बना हुआ है उसे कभी दोष नहीं देना चाहिए। जो हमारे कर्म के फल को अगर कोई प्रधान करता है तो जो प्रधान किया हुआ व्यक्ति को कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सारा दोष उसको नहीं, अगर हम उसको दोष देंगे तो घूम फिर के हम पर ही आएगा, क्योंकि वो सारा जो कार्य जो है इसके पीछे उपस्थित जो स्वयं भगवान उनके द्वारा हो रहा। तो इसलिए बताया गया है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम जितने अपने निमित्त वस्तु को जितना हम दोषी ठहराएंगे उतना ही हमारा कर्म जटिल हो जाता है, उसे स्वीकारना है। जैसे अब देखिए परीक्षित महाराज, अब परीक्षित महाराज उन्हें प्यास लगा, और जिस प्यास के कारण उन इतना प्यास लगा कि वो प्यास को सह नहीं पाए, तो उन्होंने वो सर्प उठाकर उन ऋषि के गले में लटका दिया। अब परीक्षित महाराज जो बाल अवस्था में ऐसे बड़े तेज को सह दिए, और वो था ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र के तेज को सह दिए, मगर यहां पर वही परीक्षित महाराज एक प्यास के तेज को नहीं सह पा रहे। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे भी नहीं कि परीक्षित महाराज कई दिनों से प्यासे हैं इत्यादि, नहीं, केवल एक समय की बात थी, उन्हें प्यास लगा, प्यास पूर्ति नहीं हुआ तो उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये भगवान का विशेष अरेंजमेंट था, भगवान ने योजना किया था कि अब परीक्षित महाराज, अब यहां पर परीक्षित महाराज को श्राप मिले जिसके द्वारा मैं श्रीमद् भागवतम का उदय कराऊं। तो भगवान का विशेष योजना था, अन्यथा ये कैसे संभव हो सकता है? जैसे अब चौथे स्कंद में भी देख लिया जाए, ध्रुव महाराज वो जा रहे अपने माता से आज्ञा लेकर वनों की ओर, अब वहीं पर ही उसी समय नारद मुनि मिल गए। तो कभी कभी कुछ लोग बाहर वाले जब सुनते हैं तो जो भगवान पर विश्वास नहीं रखे लोग, आप लोग की कथाओं में सब लोग एक एक जगह पर टाइम पे पहुंच जाते, लेकिन वास्तविकता भगवान का अरेंजमेंट था। अब यहां पर नारद मुनि वहां कभी भी नहीं आए, जब ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में बैठने के लिए जब जा रहे थे तब नारद मुनि वहां पर नहीं पहुंचे, चलो ध्रुव तुम मेरे गोद में बैठ जाओ, ऐसे भी नहीं। ये सारा हादसा घटना था, और वहीं पर ही नारद मुनि को आना था उन्हें विशेष ज्ञान देने के लिए। तो वैसे ये भगवान की विशेष योजना है, इसलिए भगवान अपने इस भौतिक जगत में अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, और इसी में ही वो आनंद को प्राप्त करते हैं। ये भगवान के लिए क्रीड़ा है, जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहते हैं, यथा क्रीडो पश्करणम संयोग विगमयो यह इच्छया क्रीडितुम श्यातात् तथैव च इच्छया निर्णाम। तो जैसे भागवतम के प्रथम स्कंद में भगवान के इस भौतिक जगत के वार्ताओं के विषय में बताया जाता है कि ये किस प्रकार है, तो कहते हैं कि ये भगवान का एक क्रीड़ा खेलने का एक स्थान है, जहां पर भगवान अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। तथैव इच्छया निर्णाम, उनकी इच्छा से सब होता है। जैसे कोई बालक जो बड़ा धनी है और उसने पूरे खेल की सामग्री लेकर आया, अब जैसे कि मान लो कि क्रिकेट के लिए उसने बैट बॉल इत्यादि सब लाया, अब बोल रहे डालो, अब वो बॉलिंग जब डाल रहा है और उसमें आउट भी हुआ तो बोला नहीं आउट नहीं, फिर से बोला अरे आउट हुआ, आउट तो ठीक है, स्टंप उठाया बैट उठाया मैं जा रहा हूं, नहीं 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 आप ही खेलो आप ही।
तो आप उसी का बैट है उसी का बॉल है उसके ऊपर कौन सा नियम लगेगा। वैसे ही भगवान का ही सारी संपत्ति है, तो भगवान अपनी इच्छा से सारे वस्तुओं को क्रीड़ा के रूप में खेलते हैं और वो उनके ऊपर कोई नियम नहीं और नियम सबको लागू करते हैं। वैसे यहां पर नल कुबेर और मणिग्रीव यहां पर ये कहते हुए कह रहे कि त्वम आधाय, आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। और फिर आगे कहते पुरुषः, फिर आगे तीसरा कहते पुरुषः, पुरुष यानी आप ही एकमात्र भोक्ता हो। कल तक नल कुबेर और मणिग्रीव ये सोच रहे थे कि हम पुरुष हैं, तो पुरुष की भावना में क्या होता है, व्यक्ति भोक्ता की भावना रखता है। तो वो जो स्वयं के प्रति जो भोगने की भावना तब खत्म होगी जब हम कृष्ण को पुरुष के रूप में स्वीकारें। और यहां पर नलकुबेर और मणिग्रीव वो अपना रहे कि स्वयं साक्षात आप ही पुरुष हो और हम आपके सेवक हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, परह, आप पुरुष तो हो मगर इस भौतिक जगत के लिए। तो अगर पुरुष बोलते ही लोग ये सोच बैठेंगे कि ठीक है भौतिक जगत का, नहीं, तो क्या कह रहे हैं, परह यानी कि इस भौतिक संसार से परे, जिसको सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते, जो प्रकृति के तीन गुणों से परे है, जिसे समझने का कोई कितना भी प्रयास करे। इसलिए यहां पर नलकुबेर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि आपको समझना असंभव है क्योंकि आप अपरा हो, लेकिन नारद मुनि की विशेष अनुकंपा से हम आपको जान पाए। तो भक्तियामाम अभी ज्ञान आती, केवल भक्ति के द्वारा ही इस गुणों को लांग सकते। माम चाभ्या विचारेण भक्ति योगेन सेवति सगुणति समति त्यायता, समगुणति समति क्या है, वो गुणों को लांगता है। कौन लांगता है, जो भगवान की अभ्यभिचारी भक्ति करता है। और वैसे आगे क्या कहते हैं, इदम विश्वम रूपम, और आप ही इस भौतिक संसार के विश्वम रूपम, ये भौतिक संसार का जो विश्व जो विराट रूप में भगवान को स्वीकारते, जो भौतिक संसार को ही भगवान का एक स्वरूप मानते हैं, वैसे व्यक्ति, वैसे ब्राह्मण विधु, वैसे ब्राह्मण विधु जो होते हैं वो इस प्रकार आपको जानते हैं। तो यहां पर साथ में ये भी कहा गया है कि आप कौन हो, व्यक्तम अव्यक्तम, आप ही व्यक्तम और अव्यक्त भी हो। अब ये व्यक्तम और अव्यक्तम जो शब्द दोनों को साथ में कहा गया है यहां पर, तो व्यक्तम अव्यक्तम क्यों कहा है, अव्यक्तम यानी कि जो दिखाई देता है, अव्यक्तम यानी कि जो नहीं दिखता है, मगर यहां पर दोनों भी बोला है। जैसे कि व्यक्त जो शब्द जो होता है, जैसे कि अभी ये टेबल, इसे कह देंगे व्यक्त, क्यों, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अव्यक्त कैसे कहेंगे। लेकिन भगवान ऐसे हैं जो समस्त सृष्टियों का कर्ता है, जो हमारे चर्म चक्षु के द्वारा नहीं दिखता, इसलिए वो अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। वैसे अब कोई व्यक्त वस्तु भी, अब दूसरा कारण यह भी है कि कोई व्यक्त वस्तु जो होता है उसका कुछ कारण रहता है उपस्थित होने का। जैसे कि अब ये माइक व्यक्त है, इसका कुछ कारण है, किसी ने इसे ये किसी ने बनाया है इसे, लेकिन भगवान अव्यक्त है। व्यक्त के साथ अव्यक्त क्यों है, क्योंकि भगवान को कोई नहीं बनाया, भगवान समस्त वस्तुओं के रचयिता है, इसलिए उसे व्यक्त और अव्यक्त कहा गया। अगर कोई तर्क ये रख लेते हैं कि अगर मान लो कि अर्च विग्रह, ये जो अर्च विग्रह है किसी व्यक्ति ने बनाया, तो अब ये अर्च विग्रह जो व्यक्ति ने बनाया है वो उसमें ही अगर ले लिया जाए, अब मार्बल तो वो व्यक्ति ने नहीं बनाया, शिल्पकार। अब ये शिल्पकार ने वो मार्बल तो खुद नहीं बनाया, ना ही उसने वो शिल्पकार वाले उन्होंने कुछ उसका इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसने वो तो सब प्रकृति देन है, यानी कि वो भगवान से ही प्राप्त हुआ है। अब ये बनाने वाले व्यक्ति के पास जो क्षमता है, बुद्धि है, वो भी भगवान का है। तो यानी कि इसका अर्थ ये हुआ भगवान ने ही अपने आप को बनाया। तो वैसे वो भगवान जिसको कोई नहीं बनाते हैं उसको कहा गया है अव्यक्त, व्यक्त के साथ अव्यक्त। अब तीसरा कारण ये भी बोल सकते व्यक्त और अव्यक्त, वो इस प्रकार जैसे कुछ व्यक्त वस्तु जो होता है उसका कोई स्थान होना चाहिए बैठने का, जैसे एक ग्लास है, इस ग्लास को स्थान चाहिए बैठने का, तब हम कहेंगे कि ये व्यक्त है। अब भगवान उनका तो एक स्थान नहीं है, सर्वम खलम इदम ब्रह्मन, अब पूरे संसार में वही भगवान व्याप्त है। अब इतना ही नहीं, साथ में भगवान के धाम में भी है वही भगवान, और सबके हृदय में भी उपस्थित है, उनका कोई एक स्थान है ही नहीं। क्योंकि उनका कोई एक स्थान नहीं है इसलिए उन्हें अव्यक्त भी कहते हैं। अब ये ग्लास को हम अव्यक्त नहीं बोल सकते क्योंकि इसका एक स्थान है, भगवान अव्यक्त व्यक्त के साथ अव्यक्त है, इसलिए यहां पर व्यक्तम अव्यक्तम कहा कहकर उच्चारण किया है। अब चौथा कारण ये भी बोल सकते हैं व्यक्तम अव्यक्तम, जैसे कि कोई व्यक्त वस्तु है तो उसे देखने के लिए हमें लाइट चाहिए, अगर अंधकार होगा तो हमारे लिए सब कुछ अव्यक्त रहेगा, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन भगवान ऐसे है कि अंधेरे में भी खड़े हैं तो ऐसा नहीं हमें टॉर्च मार के देखना पड़ेगा कोई खड़ा है क्या, नहीं, अंधेरे में भी खड़े रहेंगे तो भी भगवान दिखाई देते। तो इस तरह भगवान के, भगवान स्वयं ज्योति के आधार है, तो इसलिए भगवान को व्यक्तम अव्यक्तम करके उच्चारण किया है। इस तरह अनेक कारण हैं कि कैसे भगवान व्यक्तम अव्यक्तम है, और यहाँ पर नल कुबेर मणिग्रह इसी प्रकार प्रार्थना करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो प्रश्न भी आपसे उत्तर भी आपसे ही सुनना पसंद करेंगे। बोलिए बोलिए। हाँ, तो जैसे भगवान की कृपा सब पर बरसती है लेकिन कुछ ही व्यक्ति उसको स्वीकारते हैं, जैसे सूर्य जो होता है, सूर्य का किरण सभी जगह पर समय दृष्टि में फैलता है, लेकिन जो व्यक्ति ने अपने आप को घर के अंदर बंद रखा है तो उसके ऊपर सूरज का किरण तो प्राप्त नहीं होगा। जैसे वर्षा समय दृष्टि में बहती है लेकिन जिसने अपने आप को वर्षा के बूंद से छुपा के रखा है तो वो नहीं प्राप्त कर सकता। नलकुबेर और मणिग्रीव की अवस्था थी कि वो लोग योग्य पात्र थे नारद मुनि के कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके अंदर वो, अब नारद मुनि का कृपा कैसे मिला क्योंकि भगवान का अरेंजमेंट था, भगवान चाहते थे कि नारद मुनि इस दिशा से गुजरे, अल्टीमेटली भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। जैसे किसी ने कहा प्रभुपाद हमने ऐसे पिछले जन्म में कौन सा पुण्य कार्य किया है कि हम हमें आपका कृपा, हम भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा मेरी विशेष कृपा है। तो वैसे भक्त की कृपा, भक्त कृपा बरसाते हैं, वो भी उसके पीछे भी भगवान का ही विशेष अरेंजमेंट रहता है। अभी जैसे सुखदेव गोस्वामी, अब सुखदेव गोस्वामी आए परीक्षित महाराज के सामने, अब जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने आने का मुख्य कारण क्या था? परीक्षित महाराज ने कई ऋषियों को पूछे, कई भक्तों को, कई लोगों से पूछे, मगर किसी ने उनके प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक जवाब नहीं दिया। मगर भगवान का ऐसा विशेष अरेंजमेंट था कि अब यहाँ पर मेरा प्रिय भक्त आगमन है, और उसी समय पर सुखदेव गोस्वामी का वहां पर आगमन हुआ। और वैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे ही आए, तब सुखदेव गोस्वामी ने अपने कृपा को बरसाया। वैसे ही भगवान के भक्त गण जो होते हैं, वो भी सबके लिए समर दृष्टि रहते हैं, सब पर कृपा ही बरसाते हैं। लेकिन नारद मुनि सब पर कृपा बरसाते हैं, लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव को ही क्यों? अब वहां पर अन्य स्त्री भी थी, उनके ऊपर भी कृपा बरसाना चाहिए था, उनको ही क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो निमित्त और उपादान कारण, सर्व कारण कारणम, वो केवल एक ही है, वो है भगवंत। तो भगवान अपने भक्त को कभी श्रेय देने के लिए इस प्रकार भगवान अपने भक्त को द्वारा श्रेय प्रदान करते, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही प्रचार कर लिया था पूरे विश्व ब्रह्मांड में, लेकिन उनका निमित्त कारण श्रील प्रभुपाद जी को बनाया, और प्रभुपाद जी के आधार पर पूरा विश्व ब्रह्मांड में कृष्ण भक्ति गूंजी। तो उसका मुख्य कारण भगवान ही है, और भगवान अपना श्रेय भक्त को प्रदान करते हैं इस तरह। अब मैं चाहता हूं कि आपसे भी कुछ टीका टिप्पणी सुनूं। यस सर। ठीक है, पर्सनली बताइए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा भी